ओम शांति। सब ठीक मौज में है? थकान किस किस को हुई है? कौन कौन थक गए? इतना पढ़ने का अभ्यास तो नहीं है ना? फोन किसका बज रहा है? प्लीज बंद कर दीजिए। इतना अभ्यास नहीं है ना हम लोगों को ज्ञान योग का पढ़ने का? हाँ? है ये अभ्यास? किस किस को अभ्यास है इतना पढ़ने का? है इतना पढ़ने का अभ्यास? ये मधुबन वरदान भूमि है। रात्रि क्लास में रोज नोट करो कि मुझे यहां से क्या क्या वरदान लेके जाना है। सबसे पहला वरदान तो यही, कौन सा? ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हम यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। तो गॉडली स्टूडेंट को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कितना? जो पढ़ने वाले अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ते भी रहते हैं और यूं खाते भी रहते हैं, खाने को अलग समय नहीं देते। उनको लगता है ये भी तैयारी करनी है, ये भी, जो हायर क्लासेस में है या कोई हायर कॉम्पिटिशन्स में बैठते हैं, आप कभी उनकी हालत देखिए कैसे पढ़ते हैं। आप में से भी कई होंगे जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की होगी, कोई सीए बना होगा, कोई वकील बना होगा, कोई डॉक्टर बना होगा, कैसे पढ़ते हैं। और जब वो पढ़ते हैं ना, लोग कहते हैं ये तो पागल हुआ पड़ा पढ़ाई के पीछे। कहते हैं ऐसे या नहीं कहते हैं? किसने पागल होकर की है पढ़ाई? हाथ उठाना अपने टाइम। ये देखो, ये सीए है ना, इसलिए। वो देखो डॉक्टर, उसने भी, और बस ये, हाँ ये देखो इंजीनियर जो है ये भी पढ़ाई करेगा। तो वास्तव में पढ़ाई होती ही तब है जब हम सब कुछ भूल कर और उसमें लग जाते हैं। प्राप्ति भी तभी होती है। इसलिए आप देख लीजिए, ज्यादा जनता कौन सी है, साधारण या स्पेशल? साधारण। सीए कितने हैं, डॉक्टर कितने हैं, वकील कितने हैं, जजेस कितने हैं? जी, किनको? वकीलों को नहीं करनी पड़ती पढ़ाई? नहीं, वकील भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल, आगे तो 3 साल ही शायद वकील पढ़ते थे बन जाते थे, और आजकल 5 साल हो गया है भाई जी, 5 साल की पढ़ाई हो गई है वकीलों की, आगे 3 साल की। और आगे तो मुझे याद है जब हम लोग पढ़ते थे तो वो अपनी और भी कोई ना कोई पढ़ाई करते रहते थे और साथ साथ ही वकालत भी करते थे। इतना सहज होता था, 2 साल की होती थी पढ़ाई बस। तो बहुत समय बदल गया है। और हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? हम कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं? मनुष्य से देवता बनने की। है इसका कहीं और कोई स्कूल या कॉलेज कि अगर मैं ये छोड़ दूं ब्रह्मा कुमारी आश्रम, कहीं और जाकर देवता बनने की पढ़ाई पढ़ूं? है? दुनिया वाले तो स्वप्न में भी नहीं सोच सकते कि हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। सोच सकते हैं? आप अपने परिवारों को देख लीजिए लौकिक में। जो ज्ञान में आते होंगे वो ठीक है, और अगर आप ज्ञान में अकेले आते हैं या 2 व्यक्ति आते हैं, बाकी तो कहते हैं इनका तो दिमाग खराब हो गया है, वो समझते ही नहीं ये देवता बनने वाली आत्माएं हैं। इनका जीवन इतना श्रेष्ठ है, इनका जीवन इतना पवित्र है। और तो और, हम बाबा के बच्चे रेगुलर योगी हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल हमारे गुरुजी आए हुए हैं तो वो थोड़ा 5 दिन 7 दिन जरा उनकी कथा चलेगी तो भाई अभी 7 दिन तो मुझे और कुछ नहीं करना है, गुरुजी की कथा ही सुननी है, या भागवत रखी हुई है हमारे घर में तो अब मुझे 3 दिन या 5 दिन भागवत ही सुननी है, फिर उसके बाद जो मर्जी करो। हमारी पढ़ाई ऐसी नहीं है, हमारी प्रैक्टिकल, हमारी रियल पढ़ाई है। हमारा टीचर, हमारा टीचर देखो कितना एक्यूरेट है, कितना एक्सपीरियंस्ड है। वो सुप्रीम टीचर खुद तो इस धरा पर आता नहीं है, आता है क्या हमारी तरह, लेकिन हमें ट्रेंड कर देता है तुम्हें इस धरा पर कैसे रहकर चलना है। आप देखो आपके अड़ोसी पड़ोसी भी आपको मिलते होंगे, आपके परिवार वाले भी आपसे मिलते हैं, वो आपको क्या कहते हैं? कहते नहीं, आपके चेहरे पर थोड़ी अलग ही रौनक है। कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं, कहते हैं। हम लोग यहाँ मधुबन में होते हैं, जो नए नए भाई बहन योग शिविर वगैरह के लिए आते हैं, कहते बहन जी आप लोगों के चेहरे पर सब पर ना एक अलग ही रौनक है। तो हमारे चेहरों पर कौन सी रौनक है? यहां आने से तो हमारे सारे खर्चे तो छूट गए। ब्यूटी पार्लर में जाना पड़ता है किसी को? नो ब्यूटी पार्लर, नो पाउडर, नो क्रीम, कुछ नहीं। हम बाबा के बच्चे कितने सिंपल, और अपनी ज्ञान और योग की पढ़ाई से कितने चमकते हैं। तो ये कमाल नहीं है बाबा की? बाबा हमें कितना ऊंचा बना रहा है, लेकिन हम बाबा के बच्चे ये महसूस नहीं करते, ये नशा नहीं चढ़ता है। इस ज्ञान में हमने जो मम्मा बाबा को देखा, दादियों को देखा, दादियां जब आई सेवा के क्षेत्र में और हम लोग ज्ञान में आए, उस समय आप देखो ब्रह्मा कुमारी इसका कितना विरोध होता था। हम लोग तो छोटे बच्चे थे, लौकिक माँ बाप ज्ञान में जाते थे तो अड़ोसी पड़ोसी हम लोगों के घरों के आगे खड़े हो जाते थे, नहीं तुमको ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना है। आजकल तो ऐसा विरोध नहीं है, भले लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारियां ऐसी हैं वैसी हैं जादू करती हैं, लेकिन जो पहले विरोध होता था वो अब नहीं है। लेकिन जो बाबा के बने उनको ज्ञान योग का नशा इतना था, नशा था उनको कि हमें प्रैक्टिकल में भगवान मिला है, नशा चढ़ गया हम लोगों को और हमें अब सत्युग में चलना है। अब आप अपने से पूछिए आपको कितनी खुशी रहती है कि मुझे सत्युग में जाना है, दिन में कितनी बार याद आता है? और बाबा हमें रोज मुरली में याद कराते हैं बच्चे सत्युग में चलना है, बच्चे देवता बनना है, विश्व की राजाई लेनी है। जब मुरली सुनते हैं तब तो ऐसे ऐसे करते हैं, और उसके बाद पता ही नहीं कहां पहुंच जाते हैं। तो मम्मा बाबा को जो हमने देखा, दादियों को जो हमने देखा, इनको ये बहुत नशा था कि हमें कल जाकर के ये देवता बनना। आप, मैं समझती हूं, पता नहीं अभी मधुबन में है या नहीं, नहीं तो बाबा ने एक बार कहा था बच्चे अपने ऐसे फोटो खिंचवाओ जिसमें ये साधारण योगी स्वरूप भी और सजा सजाया देवताई स्वरूप भी। तो हमारी कई दादियों के, पुराने भाइयों के ऐसे चित्र हैं, ऐसे योग में बैठे हैं तपस्वी जी, कह रहे हैं नीचे गुलजार दादी का भी लगा हुआ है। तो बाबा कहते थे बच्चे अपने को नशा रखो चढ़ा के। तो हमें ज्ञान और योग, ये कोई मंत्र नहीं है कि मैंने चलो गायत्री मंत्र, वो कोई दूसरा मंत्र, उसकी माला फेर ली, 10 माला फेरनी है, 2 माला फेरनी है, माला नहीं फेरनी है। लेकिन मुझे बाबा ने आज क्या कहा, मुझे उसका नशा चढ़ाना है। बाबा ने कहा बच्चे मैं तुम्हें देवता बनाने आया हूं, देखो मुझे नशा चढ़ता है, देवता बनने का। हम तो यहां क्लास से फ्री होंगे ना अभी, कौन सा नशा चढ़ेगा? नहीं, नींद का चढ़े वो तो बढ़िया, वो भी नहीं चढ़ता। कौन सा नशा चढ़ता है आजकल? सबसे बड़ा नशा है मोबाइल। यहां से जाते ही कमरे में पहले तो वही खोलेंगे, देखेंगे क्या क्या है। मैसेज तो पता नहीं कोई आया नहीं आया, किसी ने मुझे याद किया नहीं किया, लेकिन और बहुत कुछ देखते रहते हैं। अभी हम मधुबन में आए हैं, अपने अपने मोबाइल सब बंद करो। हो सकता है कोई भाई ऐसे होंगे उनको अपने बिजनेस का या ऑफिस का ऐसा, तो भी एक टाइम रख लो, दो टाइम रख लो। अच्छा, मुझे सवेरे या दोपहर को एक बार देख लेना है और अभी रात को एक बार देख लेना है। कोई ऐसा हो तो उसको जवाब दे देंगे। फोन भी तो फ्री है आजकल, कौन से आपके पैसे लगने हैं। माना हम इन चीजों से कितना डिटैच हैं। जब तक हम डिटैच नहीं होंगे ना, हमारा योग नहीं लगेगा। योग में आगे बैठते थे, अब तो अपने ज्ञान के कितने आप देखो गीत बन गए हैं। गीत गाने वाले भी हैं, बनाने वाले भी हैं। आगे तो वो गिनती के 30 रिकॉर्ड हुआ करते थे, बस वही योग में बजते थे, सब फिल्मी होते थे। तू प्यार का सागर है, हैं? आते ना, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, ये फिल्मी गीत बजते थे। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, हैं? हमें उन राहों पर चलना है। तो लोग यही हंसा करते थे, कहते थे ये ब्रह्मा कुमारियों का योग कैसे है। दो विशेषताएं थी, एक तो ये फिल्मी गाने चला के कहते हैं हम भगवान को याद कर रहे हैं, योग लगा रहे हैं, और दूसरा आंख खोल के ये पता नहीं दृष्टि आंख से आंख क्या मिलाते हैं। आप यूं किसी को देख लो, अभी आप बैठे ना, अपने आसपास वाले को जरा यूं देखो, है ताकत बैठने की देखने की? कोई देखेगा कहेंगे पता नहीं, चाहे बहन बहन को भी देखे, भाई भाई, ये पता नहीं मुझे क्यों बहुत देर से देख रही है, घूर रही है। तो फट से हमारे मन में ये आएगा, और योग तो है ही ऐसा, दृष्टि। हम लोग ज्ञान में आए, माँ बाप ज्ञान में आए, तो हम छोटे छोटे बच्चे थे 5-6 साल के, तो ये नहीं मालूम था योग में दृष्टि क्या होती है। पर बच्चे बच्चे क्योंकि नहीं तो बैठ के हल्ला ही करेंगे, हम बाहर बैठ के अपना अलग जो होते थे ना, कभी बच्चे मिल जाते थे तो क्या एक दूसरे को ये तू मुझे देखना मैं तुझे देखूंगी, और एकदम ऐसा बैठ जाते थे बस। क्या मजा ला हंस जाए, क्या मजा ला बोल जाए, तब यही योग समझते थे। तो बाबा हमें इतनी ऊंची पढ़ाई, इतनी ऊंची तपस्या और इतनी सहज। हम जो मधुबन में आए हैं, अपने आप को पूछ पूछ कर ये पक्का करें मुझे कितना योग करना है। 8 घंटे 10 घंटे नहीं कहते हैं, कितना योग करें अपने अंदर पक्का करो। कोई कोई कहते हैं दीदी हम तो 4 बजे उठ नहीं पाते। अच्छा, नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, 4:30 उठो, 5 तो उठो, इससे तो लेट क्या उठेंगे, फिर क्या योगी रहे नहीं तो। और जितना है हमारे अंदर योग की शक्ति आएगी ना, अपने आप आपकी 4 बजे भी आंख खुलेगी। आप 8-10 दिन करके देख लो, कुछ भी हो 5 बजे उठ के, पर ऐसे ही उठ के नहीं बैठ जाना, उठो अच्छी तरह हाथ मुंह धो के, बाल बाल बना के बैठो बाबा के आगे। और ये संकल्प रखें, ये अभ्यास करें, ये भावना हो मुझे बाबा शक्ति दे रहा है, मैं आत्मा बाबा से शक्ति ले रही हूं, ले रहा हूं। तो क्या मुझे ये फीलिंग आती है बाबा मुझे शक्ति दे रहा है। आजकल तो हम देखते हैं भाई बहनें, चाहे योग कराने वाले हैं चाहे करने वाले हैं, दोनों आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, करने वाले भी कराने वाले भी। ये हमारा योग ही नहीं आंखें बंद करके बैठना, हमारा योग ही खुली आंख का योग है। क्योंकि हमारा अभ्यास है कौन सा, मैं आत्मा हूं और मैं सामने आत्मा को देख रही हूं, मुझे दिखाई दे रही है ये आत्मा। आप लौकिक रीति में देख लो, मान लो आज मेरा इस बहन से कोई थोड़ा झगड़ा हो गया, या मैंने किसी भाई को किसी और माता को थोड़ा कुछ उल्टा बोल दिया, फिर आंख मिला सकते हैं? वो व्यक्ति सामने आएगा ना तो बहाना करके ही मुंह यूं घुमा के चले जाएंगे, एक दो दिन तो हम एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे। लेकिन अगर हम दृष्टि लेते और देते हैं, मान लो मैंने आज कुछ इसको उल्टा कह भी दिया, तो अब दृष्टि कैसे दूंगी और कैसे लूंगी? तो उस समय अपने दिल दिमाग को एकदम क्लियर करना पड़ेगा ना, नहीं ये भी बाबा की बच्ची है, मैं भी बाबा की बच्ची। संगम युग पर हमें अपने हिसाब किताब लौकिक अलौकिक दोनों से तुरंत 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 चुकतु करने, दो दिन चार दिन नहीं लगाने हैं। ये भाई ने, ये बहन ने, ये उसने मुझे दो दिन, परसों पता है आपको इसने मुझे ऐसे कहा था, परसों अरसों की तो बात ही नहीं, वो तो क्लीन वहीं चुक तू। उसने मुझे कुछ कहा, मैंने भी कुछ कह दिया, नहीं कहा तो अपने दिल दिमाग को क्लीन कीजिए। योग माना ही है क्लीन हार्ट क्लीन ब्रेन, एकदम बस बाबा, तब तो हमारा अमृत वेले योग लगेगा। अमृत वेले मेरी आंख क्यों नहीं खुलती? क्योंकि मेरा दिल दिमाग तो थका हुआ है, इस भाई ने बहन ने मुझे ऐसे कहा था, अब वही दिमाग में घूम रहा है, परिवार में रहते हैं, माँ बाप ने ऐसे कहा, भाई बहन ने ऐसे कहा, पति पत्नी ने ऐसे कहा, फिर वो कोई रियल नींद आती है? नींद भी तो आर्टिफिशियल है, सारी रात सो जाते हैं, उठते हैं कहते हैं आज तो रात को नींद ही नहीं आई, क्यों? क्योंकि वो बातें घूमती रही। इसलिए बाबा ने, अगर आपको याद हो, एक साकार मुरली में भी बाबा ने कहा, बच्चे रात को सोने से पहले कितनी देर, आधा घंटा योग करके अपनी सारे दिन भर का चार्ट सुना के फिर सोना है। कौन कौन पक्के हैं इसमें? हैं थोड़े जो करते हैं, बधाई है आपको। हमारे पास भी देखो, हमारे म्यूजियम में गीता बहन रहती है, चाहे रात को देर भी हो जाएगी ना, मान लो आज किसी कारण से आज कोई प्रोग्राम था कुछ था, 10 बज गया तो भी पूछो बहने बैठी योग करके सोएगी ना, आधा घंटा नहीं तो 20 मिनट उसका पक्का है बाबा के आगे जाके बैठेगी। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे आप बाबा के आज्ञाकारी बनते हैं ना, उसके भी 5 नंबर मिलते हैं। बाबा ने कहा मुझे याद करके सोना आधा घंटा, चलो मैंने 20 मिनट याद किया, यस हेलो बाबा, ओम शांति बाबा, गुड नाइट बाबा, बस बाबा आज का दिन अच्छा बीता या नहीं बीता, थैंक यू बाबा, मैंने याद किया 15-20 मिनट, फिर सोई, तो मेरे को तो 5 नंबर मिल गए ना। भोजन करने लगे, बुलाया बाबा को, बाबा आओ, पर ऐसे नहीं बुला के और फिर खुद ही गटागट खा जाओ, बाबा को पूछो ही नहीं बाबा कुछ और चाहिए या नहीं चाहिए। तो बाबा को साथी बना के तो 5 नंबर वहां मिल जाएंगे। दिन में देखो आज मैंने कितनी बार 5-5 नंबर लिए। हम एक एक छोटी छोटी बाबा की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमें 5-5-5 नंबर, कम से कम 40-50 नंबर तो लें, 100 ना लें तो। बाबा कहता है किसी को भी देखो तो कैसे देखो, आत्मा की दृष्टि से, आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं। ऐसे नहीं ये भाई ठीक नहीं, ये बहन ठीक नहीं, तो मैं ठीक हूं। हम हमेशा सुनाते हैं, हमारी वो देहरादून वाले प्रेम दीदी थी ना, वो हमेशा कहते थे ये अंगुली जो है ना, सारे लोग बहुत अच्छे हैं, ये सारी दुनिया में सब बहुत अच्छे हैं, एक मेरे सिवाय। ये अंगुली ऐसे घुमाओ, मेरे सिवाय, सब अच्छे हैं मेरे सिवाय, मुझे परिवर्तन करना है। लेकिन हम तो क्या सोचते हैं, आप परिवर्तन हो जाओ, मैं हूं या ना हो, आप ऐसे क्यों बोलते हैं? आपने अपनी चाय बनाई, मेरी क्यों नहीं बनाई, तो तूने क्यों नहीं बनाई? हम बात बात में उलझते रहते हैं। उलझना नहीं है, ये पक्का करो। हम यहां मधुबन में आए हैं, कम बात नहीं है। देखो इस बार तो मधुबन की ये भट्टियां ही नहीं थी, फिर अचानक कहा अच्छा रखेंगे 100 भाई बहन आए। आप देखो कितने कम भाई बहन आए हैं। कई ऐसे होंगे जिनको आना था वो नहीं आए, और जिनको नहीं आना था वो एक ही दिन में तैयार होके आ भी गए कि चलो चलो चलते हैं। तो ये हमारा भाग्य है ना। तो इस बार मधुबन में हम सब जो आए हैं, कौन सी बात गांठ बांध के ले जाएंगे बताइए, बोलो बोलो। कोई बात नहीं, गांठ बांधनी, वाह, नहीं बदलना, मुझे नहीं बदलना, बहुत मुश्किल है बदलना, मैं तो नहीं बदलूंगी। और कोई बात बताओ, आसान आसान, अच्छी अच्छी। ये बदलने का काम बहन बहुत मुश्किल है। हाँ और बताइए, 4 घंटे मोबाइल बंद, अच्छा और क्या करेंगे, और इससे आसान बताइए जी, विशेषता देखनी है और है आज्ञाकारी होके रहना है और। अरे भाई सबसे सहज बात बताई ना अभी, है आर्गुमेंट नहीं करेंगे, वो तो जरूर करेंगे, हमें भी तो बुद्धि है काली, आपको थोड़ी है। हाँ सब बहुत अच्छे, सबके लिए ये शुभ भावना कहना बहुत आसान है कि शुभ भावना रखो, शुभ भावना रखो। और ये कहते इसका देखा है जरा, इसको देखा है जरा, सब बहुत अच्छे हैं, बाबा के बच्चे ये बहुत अच्छे, बाबा के बच्चे ये बहुत प्यारे हैं, और मैं बाबा का बच्चा हूं, मैं बाबा का बच्चा बहुत अच्छा हूं, यही मंत्र पक्का कर लो। मैं अच्छा हूं या नहीं हूं? चुप, क्या हुआ, मुश्किल प्रश्न पूछ लिया, यही पक्का करो 3 दिन, मैं बाबा का नंबर 1 बच्चा हूं। कौन है नंबर 1? अभी हाथ भी नहीं उठता। नहीं नहीं आपको एक बात बताएं, ये बातें तो बहुत छोटी लगती हैं कि हाथ उठाने से क्या होगा, बात तो सही है, हाथ उठाने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन बार बार अपने को ये रिमाइंडर देना मनुष्य का स्वभाव है। मंत्र जपना उसका महत्व क्या है, माला फेरना इसका महत्व क्या है, अर्थ इसका यही है कि हमारे अंदर वह भाव भावना पक्की हो जाए। हम कहते तो हैं बाबा ने कहा सबके लिए शुभ भावना रखो, फिर ये भी कहते हैं मैं तो अपने घर में फलाने को ये शुभ भावना का दान दिया, मेरा वो ठीक हो गया, फिर बाकी सब क्यों नहीं ठीक हुए? सब ठीक हो ना, मुझे सदा शुभ भाव भावना में ही रहना है। 1 घंटा नहीं, मैं 1 घंटे का योगी नहीं हूं, 1 व्यक्ति के लिए शुभ भावना नहीं रखनी है, एक व्यक्ति की केवल महिमा नहीं करनी है, ज्ञानी हो अज्ञानी हो, सब बाबा के बच्चे हैं, ये भावना पक्की करें। हर आत्मा बहुत अच्छी है, मैं बाबा का बच्चा भी बहुत अच्छा। अभी आप 3 दिन 4 दिन यहां रहेंगे ना, ये भावना पक्की करिए। ऐसे नहीं यहां से गए नीचे, बस कोई कार से जाएगा कोई गाड़ी से जाएगा, बस नीचे तक पहुंचे तो फिर वही बातें। इस बार तो क्या भी हो, मैं बाबा का पक्का बच्चा हूं, मुझे परिवर्तित होके जाना है। क्या परिवर्तन करना है वो अपना अपना सोचो। ये परिवर्तन नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, वो तो आप करेंगे, मैं आपको बता देती हूं। तो क्या क्या करें, हम कह देते हैं भाव भावना, ये शुभ भाव शुभ भावना, इसी पे सूक्ष्म में काम करना है। हर किसी के लिए श्रेष्ठ भावना, हर किसी को इसी नजर से इसी भाव से देखना, ये बाबा का बच्चा है। बस ये नहीं, हमारा तो किसी से कोई बहन जी स्वार्थ नहीं, हम तो किसी से कुछ लेते नहीं, हम संसार में केवल लेते ही लेते हैं, कुछ देते ही नहीं है। आप कभी सोच के देख लेना, लेते ही लेते हैं। ये प्रकृति के 5 तत्वों से भी लेते हैं। हम घर में 2 लोग रहते हैं या 4 रहते हैं या 10 रहते हैं, हम लेते हैं या नहीं लेते, आपस में नहीं भी बोलते होंगे, 1-2 का सहारा है, हाँ फलाना है घर में, अकेले हूं तो कैसा लगता है, तो लेते हैं नहीं लेते हैं। इसलिए आज से ये पक्का कर लो, हम बाबा के बच्चे हैं और हम बाबा के बच्चे सेवाधारी हैं, और ये सब बाबा के बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो जितना जितना हमारी भावना खुद की श्रेष्ठ हो, कहना बहुत आसान है शुभ भावना, लेकिन भावना स्वरूप बनना इसमें मेहनत है। अभी भी देखो हम बाबा के बच्चे, चाहे वो तो हम जानते हैं, हम अभी संपूर्ण नहीं बने हैं, हम सब पुरुषार्थी हैं, फिर भी आप देखो आपके मित्र दोस्त जब आपसे मिलते हैं, कहते हैं ना आपके चेहरे थोड़े फर्क है हमसे, कहते हैं नहीं कहते हैं, कहते हैं आपके चेहरे पर बहुत शांति दिखाई देती है। ये तो हम थोड़ा सा पुरुषार्थ करते हैं तो ही अज्ञानियों को हमारे से ये अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, और अगर हम ये फुल उसमें रहें तो कितना होगा। तो मैं बाबा का बच्चा कैसा हूं, निश्चिंत है, निश्चिंत रहो। दुनिया में अब परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, आप किसी भी चीज का देख लीजिए, चाहे प्रकृति का देख लीजिए, देख रहे हो ना 5 तत्व, कभी देखी थी इतनी गर्मी, ये मई के महीने में आबू में ही देखो कितनी गर्मी है। आगे हम जब कभी मधुबन आया करते थे पहले छोटे थे, इन दिनों में भी अपना शाल स्वेटर लेके आते थे हल्का सा, और जून जुलाई से तो बारिश होने लग जाती थी, और अब देखिए मौसम यहाँ का, शहरों का मौसम देख लीजिए। तो ये प्रकृति भी नाराज है, मनुष्य भी नाराज है, लेकिन मुझे क्या करना है, सबको शांति का दान देना है। ऐसे नहीं हम तो खुश हैं, हम सबसे खुश हैं, हम सबसे खुश है नहीं, हमें सबको शांति का दान देना है। अभी हमारा वर्तमान में जो पार्ट है वो दातापन का पार्ट है, देने का पार्ट है, मैं आत्मा कौन हूं? दाता का बच्चा हूं, दाता हूं। आप देख लो जितने भी अच्छे अच्छे योगी महात्माएं दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं, हाथ कैसे है उनका। आप गुरु नानक जी का देखो, महात्मा बुद्ध का देखो, ऐसे ही हाथ है ना। हमारा हाथ भी कैसे रहना चाहिए, ऐसे नहीं मेरा तो हाथ दुख रहा है, अरे मेरी तो बाह दुखने लग गई दो मिनट में, मैं तो नहीं कर सकती। तो बात ऐसे करने की नहीं है, मेरी दृष्टि मेरी भावना। आप ये प्रयोग यहां जो अभी 3-4 दिन रहेंगे ना, यही प्रयोग कीजिए। मैं पूरे विश्व को, प्रकृति के पांचों ही तत्वों को क्या कर रही हूं, सुख शांति पवित्रता सब का दान दे रही हूं। दीजिए, सोएंगे ना सोने से पहले भी सुख शांति पवित्रता का दान दीजिए, फिर सो जाइए, देखिए आपको कितना आनंद है। ये सोने वाला प्रयोग 3-4 दिन जरूर करिए, सोने से पहले 15-20 मिनट। मैं सबको सुख शांति का दान दे रही हूं, आप देखे देखिए। चाहे आपका लौकिक परिवार वहां जयपुर में बैठा है, आप यहां से सबको सुख शांति का दान दीजिए। सब बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं, शांत हैं। 15-20 मिनट योगदान, ऐसे 1 सेकंड नहीं या 5 मिनट नहीं, कम से कम 20 मिनट, नहीं तो आधा घंटा तो बाबा कहता है जरूर, आधा घंटा योगदान दो बस। खुद में भी परिवर्तन आएगा, उन लोगों में भी परिवर्तन। तो बाबा वरदाता है, हम बच्चों को इतने वरदान देता है तो हम बाबा के बच्चे क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। सुनते सुनते भी पता नहीं परमधाम में चले जाते हैं। अच्छा अब आप लोग पूछिए, कोई प्रश्न पूछिए, परमधाम में मत जाइए, कुछ पूछिए। अच्छा सुदेश दीदी की क्लास आपने सुनी ना, क्या बात अच्छी लगी, कोई भी सुनाए, पहले भाई सुनाओ, कौन सुनाएगा, हाथ उठाओ, हाँ सुनाओ, कौन सी बात अच्छी लगी हैं? हाँ कितने प्रकार की भट्टी है, समझ में आई आप सबको ये बात हैं? धोबी की भट्टी, कुमार की भट्टी, किसकी, रंगरेज। आपको पता है ये जो कुम्हार जो हैं, जब बर्तन बनाता है इसकी भट्टी कितने बजे जलती है, सवेरे 2-2.5 बजे। हमारा पहले कोटपुतली में सेंटर जो था ना, वो कुम्हारों के मोहल्ले में था, तो वहां वो लोग 2 बजे ही उठ करके जो वो बर्तन सांचा बना के रखते हैं ना, फिर वो सवेरे 2 बजे उठ के उनको ऐसे ऐसे थप थपाते हैं, तो वो 2-2.5 बजे ही लग जाते थे हमारी नींद, क्योंकि बिल्कुल हमारे आम सामने थे जो पहले मकान था किराए पर। तब समझ में आया कि ये कुम्हार भी जो बर्तन बनाता है जी, वो भी अमृत वेले ही घड़ता है, इनको भगवान भी हम बर्तनों को अमृत वेले घड़ता है, अमृत वेले का बड़ा महत्व है। ये वंडर लगा मेरे को कि मटका तो मटका ही है, लेकिन वो अमृत वेले उठ के उनको ऐसे ऐसे हाथ से थप थपाते हैं सारे उसको, और अमृत वेले का जो मटका होगा ना वो ही ठंडा होगा, ऐसे ही है ना, ये कोटपुतली वाले बैठे जी। अच्छा है ये पर अमृत वेले का बना हुआ मटका ही ठंडा होता है, बनाते तो होंगे, सारा दिन भर बनाते जी, ठंडी में बने हुए मटके, वही मतलब हुआ ना ठंडी में, वो समझते हैं वो मटका ठंडा होगा। लेकिन देखिए कितना माना प्रकृति पर, मनुष्य का और मनुष्य का प्रकृति पर प्रभाव है। और सुनाइए, और क्या सुनाया सुदेश दीदी ने? तो आपको कौन सी दही जमानी है? दही जमाते हैं तो मालूम है ना, जो पहले का दही जमा हुआ है वो थोड़ा सा दूध में डालेंगे, दूध भी थोड़ा हल्का गर्म सा हो, ऐसे नहीं ठंडे दूध में डालो तो जम जाएगा। तो बाबा भी हमें क्या सुना रहा है? कल बाबा ने क्या सुनाया, आज सवेरे मुरली में क्या सुनाया, फिर मैंने उसका क्या मनन चिंतन किया, मैंने उसको धारण किया या नहीं किया। देखो सुदेश दीदी की ये विशेषता हमने शुरू से देखी, बाबा साकार में थे तो बाबा सुदेश दीदी को ज्ञान बुलबुल कहते थे। इन्होंने अपनी इस क्वालिटी को कहें नेचुरल वे में या कैसे भी, इसको खूब बढ़ाया शुरू से। ज्ञान ने, बाबा ने आज जो ज्ञान की बात सुनाई ना, उसको वो कई प्रकार से मनन चिंतन करके सबके आगे रखना सुनाना जी। स्मॉल आई में बिंदी लगाओ और वो दूसरे हैंगर में जो मर्जी लटका के रखो, अब आपकी मर्जी है। बोझा उठाना है तो कैपिटल लिख लो, और फ्री होना है तो छोटी सी आई की लाइन डाल के ऊपर बिंदी लगा दो, बिंदी बाबा ऊपर है और मैं बिंदी सामने हूं बस। तो कितना रमणीक विधि से ना ज्ञान की बातों को अपने अंदर मनन चिंतन करना, ये इस बार पक्का करो यहां से कि हमें ज्ञान की बातों का मनन चिंतन करना है जी। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। हाँ भट्टी माना चमकाना, पॉलिश, तो पॉलिश करो जरा अपने दिल दिमाग को, ऐसे ना अपने दिल दिमाग को भी हम पॉलिश करें। और कौन कौन सा साबुन है? एक एक नहीं तो मेरे को तो सुनाई नहीं देगा। लक्स सोप और लाइफ बॉय और सनलाइट, तो सबको मिल गया है फ्री के साबुन। हाँ अभी तो, अभी हम लोगों ने भी पहना ना, लग रहा है ना साफ है एकदम, फिर उतारेंगे तो लगेगा अरे ये इतना मैला हो गया क्या। तो जरा हम भी अशरीरी बनके तो देखें कि आज मैंने दिन भर में कितनी मैल चढ़ाई है और कौन कौन सी मैल मुझे उतारनी है। मैं तो एकदम अशरीरी आत्मा हूं। वैसे ये जो अशरीरी का अभ्यास है ना, इसको भी पक्का कीजिए, आप देखना आपको इतना अच्छा लगेगा ना, जैसे हम कहते हैं मैं आत्मा हूं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसे मैं एकदम अशरीरी हूं, केवल पॉइंट हूं। इसमें आपको बहुत आनंद आएगा। वो जो मुझे लग रहा था ना मेरे कंधे में दर्द है, सिर में दर्द है, हाथ में दर्द है, मैं हूं ही अशरीरी आत्मा। दिन में अनेक बार दो दो मिनट भी अभ्यास कीजिए, आपकी कई बीमारियां ऐसे खत्म हो जाएंगी। मैं अशरीरी आत्मा हूं, बीमारियों से छुटकारा पाने का बहुत सहज साधन है। मैं एकदम आत्मा हूं, लाइट हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। शिव बाबा की लाइट मुझ पर आ रही है। तो देह रही नहीं ना, देह की याद ही नहीं है। इस देह को भूल जाना तब कहेंगे अशरीरी। और कोई बात, कोई प्रश्न? बस करें दो मिनट बाबा को याद जी। अच्छा, मैं समझती हूं, मैं 11-12 साल की थी जब मैं पहली बार बाबा से मिली। उससे पहले हमारे लौकिक माँ, क्योंकि मैं 5-6 साल की थी जब ज्ञान में लौकिक माँ बाप आए, तो वो लोग तो हर साल आते थे मधुबन, लेकिन हम बच्चों को नहीं ले आते थे। लेकिन हम जैसे थोड़े बड़े हुए तो अपने आप उनको लगा कि अब इनको बाबा से मिलवाना चाहिए। तो हम जिस दिन आए तो एक तो हमारा लौकिक परिवार था और दिल्ली से भी कुछ कुमारियों का ग्रुप आया हुआ था। तो बाबा शाम के समय 5 बजे के आसपास, ये जो छोटा हॉल है मधुबन में अपना, उस छोटे हॉल में, तो पहले तो दिल्ली का ग्रुप आगे बैठा हुआ था, बाबा उनसे मिले, हम लोग तो पीछे बैठे थे, फिर बाबा हमारे परिवार से मिले। तो मैं जब छोटी थी ना, मुझे एक ज्ञान का ये जो पॉइंट है कि ये जो ड्रामा है ना, ये हूबहू रिपीट होगा। इस पर मैं अकेले बैठे बैठे बहुत सोचती थी, पूछती नहीं थी किसी, भाई विनाश होगा, ये हॉल वगैरह सब गिर जाएगा, फिर ये ऐसे ही बन जाएगा, खड़ा हो जाएगा, ये कैसे होगा। मुझे ना ये बहुत चलता रहता था ऐसे, कोई भी चीज देखना, अच्छा विनाश हो जाएगा, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी, हम खत्म हो जाएंगे, फिर यहां बन जाएंगे, कैसे बनेंगे। तो ये तो मन की बात मन में ही थी, कभी किसी से शेयर नहीं की, पूछा नहीं। लेकिन जब मैं बाबा से पहली बार मिली, मैं बाबा के सामने बैठी, पहले तो और सब मिले, तो बाबा ने मेरे से एक ही प्रश्न पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? तो मैं देखती रही बाबा को, कुछ नहीं बोला मैंने। फिर दोबारा बाबा ने पूछा, बच्चे पहले कभी मिली हो? तो मैंने फटाक से, हां बाबा कल पहले। और वो दिन और आज का दिन मेरा वो प्रश्न ही खत्म हो गया। बाबा ने जैसे वो प्रश्न ही मेरा खत्म कर दिया कि हम फिर कैसे मिलेंगे, फिर बाबा ऐसे ही आएगा ना, अब नहीं। बाबा ने ये पूछा, बच्ची पहले कभी मिली हो? तो पहले तो मैं चुप रही, फिर बाबा ने दोबारा कहा, बच्चे पहले कभी मिली हो? हां बाबा कल पहले। बस उसके बाद मैं बाबा की गोद में चली गई। तो बाबा बड़ा, यूं तो बाबा कहता बच्चे मैं कोई अंतर्यामी नहीं हूं, पर ये मैं आप जरूर कहूंगी कि बाबा तो बहुत कुछ जानता है, कुछ नहीं बहुत जानता ही है, जानता ही है। उस समय में जब हम लोग ज्ञान में चले, सब लोगों को यही होता था, विनाश तो हो जाएगा, क्या करेंगे ये बना के, क्या करेंगे पढ़ के, क्या करेंगे। तो ठीक, मैंने तो बताया मैं तो छोटी थी जब ज्ञान में आई। फिर जब मैंने 10th पास किया, उस समय बहुत चारों तरफ वातावरण ऐसा ही था, सब अपनी अपनी कुमारियों को, जो कुमारियां ज्ञान में चलना चाहती थी उनको सेंटर्स पर रखना, भेजना, उन दिनों ट्रेनिंग का नहीं था इतना। तो बहुत सी कुमारियां हमारे वहां से भी सेवा में आई लगी, पर मेरे को ये लगता था कि ये क्या, अंदर की बात आपको बताती हूं, मैंने कभी ये सुनाया नहीं, तो ये क्या पढ़ाई नहीं करनी। और मेरा भी जब 10th 11th पास हो गया, मेरे लौकिक पिताजी ने कहा बाबा को पत्र लिखो, लिखते भी थे हम लोग पहले भी, कि बाबा मैंने अभी 11th पास कर लिया है और मेरा इच्छा है मैं बाबा की सेवा में लगूं। मैंने ऐसे ही बाबा को लिख दिया, किसी को कुछ नहीं कहा। आप सोचते हैं बाबा का क्या जवाब आया होगा। बाबा ने कहा बच्ची को आगे पढ़ाओ, इंग्लिश सीखे, बाबा इसको विदेश में सेवा के लिए भेजेगा। तो क्योंकि हमारे घर में जो कुछ भी होता था, इवन हमारे पेरेंट्स को अगर शादी में भी किसी के जाना है, क्या देना है, क्या, सब बाबा से पूछ कर होता था। अब जब बाबा ने कहा बच्ची को पढ़ाओ, हमारे फादर को डायरेक्शन मिल गया, फिर क्या होना था? फिर मैं पढ़ी, मैं ग्रेजुएशन पास किया, नहीं तो मेरे को लगता था ये क्या। तो मैंने देखा बाबा अंतर्यामी है, जानी जाननहार है, बाबा सब जानता है और बाबा वो करता है जो हम चाहते हैं। तो आज हम बाबा की दुनियावी भाषा में जैसे कहते हैं, बाबा की विशेष कृपा और इससे यहां तक पहुंच गए। हम जो भी हैं, मैं तो हमेशा कहती हूं मैं जो हूं मुझे बाबा ने ही बनाया है, मैंने जो सीखा बाबा से सीखा, इसलिए हर पल शुक्रिया बाबा। चलो बैठें दो मिनट बाबा की याद में।
से भर लीजिए।